न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, चक्रवाती तूफान टाउते के बाद एक और तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा नीट यूजी 2021, जेईई मेन और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए की गई उच्च स्तरीय बैठक में क्या तय हुआ, यह भी बताएंगे आपको। हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की भी खबर लेकर आए हैं हम। लेकिन इन सबसे पहले आइए चले देश के पश्चिमी तटीय राज्यों की ओर और जानें वहां का हाल। देश के पश्चिमी तटीय राज्यों में पिछले दिनों टाउते नामक चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया था। अब ऐसा ही एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक यास नाम का यह चक्रवाती तूफान 26 मई को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर पहुंचेगा। इस समय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 24 मई यानी आज इसके चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं। इसके बाद अगले 24 घंटे में यह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, सेना और तट रक्षक बल को सेवा में लगाया गया है। NDRF की 85 टीमों में से 32 को बंगाल में और 28 को ओडिशा में तैनात किया गया है। कुछ टीमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात की गई हैं। बंगाल सरकार ने राज्य सचिवालय नबन्ना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसे मंगलवार और बुधवार को ममता बनर्जी खुद संचालित करेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान के प्रभाव के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिन धूल भरी हवा चलेगी। इनकी रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में सोमवार और मंगलवार को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और बिजली गरजने के साथ बारिश होने का अनुमान है। IMD के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 और 24 मई को भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 25 मई को बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में 25 से 27 मई तक बारिश संभव है। वहीं झारखंड और बिहार में 26 मई व 27 मई को बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम में कोरोना काल में हुई मौत के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं। पिछले साल मार्च से मई तक 3 महीने में मेरठ नगर निगम में 962 आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आए थे, लेकिन इस साल सिर्फ अप्रैल महीने में ही 859 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि मई में 1017। इस साल 1 मार्च से 20 मई तक यानी 71 दिनों में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुल 2732 आवेदन मेरठ नगर निगम को मिल चुके हैं। गौरतलब है कि नगर निगम केवल उन मामलों में ही प्रमाण पत्र जारी करता है जहां मौत घर पर हुई हो या उस अस्पताल को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार न हो जहां मृत्यु हुई थी। मृत्यु के समय अस्पताल सिर्फ डेथ स्लिप देते हैं, सरकार से अधिकृत प्रमाण पत्र नहीं। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने रविवार को मुंडका से पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में पहलवान सुशील कुमार ने सागर धनखड़ से मारपीट की बात कबूल की है। सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में वह शामिल था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर धनखड़ और सुशील कुमार के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील ने किराए के पैसे की वसूली के लिए सागर धनखड़ की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नीट UG 2021, JEE मेन और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक रविवार को हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से 25 मई तक लिखित सुझाव मांगे हैं। निशंक ने ट्वीट कर बताया कि सभी राज्यों से लिखित सुझाव 25 मई तक भेजने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हाई लेवल मीटिंग बहुत ही उपयोगी रही क्योंकि इसमें मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की गई है। सूत्रों के अनुसार CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जुलाई में हो सकती हैं। परीक्षाएं किस फॉर्मेट में होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को देंगे। 1 जून को ही 12वीं की CBSE परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नियंत्रण होने के बाद अब सरकार कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी में है। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी, कैसा स्वरूप होगा, इस पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि अलग अलग इलाकों में संक्रमितों की संख्या देखते हुए छूट दी जाएगी। जिस कॉलोनी में 5 मरीज होंगे वहाँ के लिए अलग, 10 मरीज वाले कॉलोनियों के लिए अलग और 15 से 20 संक्रमित मरीजों की संख्या वाले इलाकों के लिए अलग से नियम तय होंगे। साथ ही सरकार ने तय किया है कि मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकाली जाएगी। इसके लिए 2 दिन अभियान चलेगा। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की भी जानकारी जुटाई जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI का अगला प्रमुख चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इस बैठक में PM मोदी के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि CBI प्रमुख पद के लिए 1984, 1985 और 1986 बैच के अफसरों के नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसमें राकेश अस्थाना, YC मोदी और सुबोध जायसवाल के नाम आगे चल रहे हैं। मौजूदा समय में 1988 बैच के गुजरात कैडर के IPS अफसर प्रवीण सिन्हा कार्यकारी CBI प्रमुख का भार संभाल रहे हैं। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। News18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।